और आगे आइए, और आगे, और आगे। कीर्तन कर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन मना जय गिरिवर जय गोपी जन मना जय गिरिवर शोधनंदन जय दश जन शोधनंदन जय दश जन जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज प्रणाम करें। जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राज गजानन अष्टोत्तर श्री श्रीमदेष्टवाइंग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिवराम दी होलवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्रीराधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे और गौरीष्ट सिमरन गोरी और गौरीष्ट सिमरन गोरी All glories to Simran devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. सब पंखे बंद कर दीजिए। जितने पंखे चल रहे हैं सब बंद कर दीजिए। मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बात है, आप लोग बोलते नहीं। यहाँ तो कितने लोग बैठे हैं, किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14। अध्याय का नाम है प्रकृति के तीन गुण। श्लोक संख्या 10। सभी निकालिए। पेज नंबर 452। पेज नंबर 452। इसको कोई नहीं देख रहा है। ये किताब किसी को चाहिए? ये किताब यहाँ रखी है। पेज नंबर 452 सब लोग निकालिए। मिल गया सबको? मेरे पीछे बोलिए। रजस्तमश्चाभिभूय। लगता है जैसे कोई है ही नहीं, बहुत दो तीन लोग। सब लोग बोलिए मेरे पीछे, चाहे किताब हो ना हो। जिनके पास किताब नहीं वो भी बोलिए। सब लोग बोलिए। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। देखिए भगवान के शब्द बड़े सरल हैं, आप लोग क्यों डरते हैं? ये संस्कृत भी भगवान ने बोली है तो बहुत सरल है। सब लोग बोलिए। रजस्तमश्चाभिभूय। फिर भी लगता है जैसे तीन चार लोग हैं, ज्यादा है ही नहीं। सब लोग बोलिए। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजा सत्वं तमश्चैव तमासत्वं रजस्तथा। देखिए जब बातें करते हैं तो कितना सुर होता है, जमीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन भगवान के शब्द बोलने में मुंह खुल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोलते आप लोग? मुंह खोलिए सब लोग। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमासत्वं रजस्तथा। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजा सत्वं तमश्चैव तमासत्वं रजस्तथा। बोलिए बोलिए।
सत्वं भवति भारत
और कोई बोलिए बोलिए
रजस्तम श्राभी भूया सत्वं भवति भारत
और कोई और कोई शब्दार्थ बोली रजह रजोगुण तमह तमोगुण को च भी अभिभूय पार करके सत्वम सत्वगुण भवती प्रधान बनता है भारत ही भर पुत्र रजह रजोगुण सत्वम सतोगुण सतोगुण को तमः तमोगुण च भी एवं उसी तरह तमः तमोगुण सत्वम सतोगुण को रजः रजोगुण तथा इस प्रकार अनुवाद मेरे पीछे बोलिए हे भरत पुत्र कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है तो इस श्लोक को समझेंगे इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं रजस तमस चा विभूय सत्वम भवति भारत रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण उठता है और रज सत्वम तमश्चैव फिर रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके बढ़ता है फिर तम सत्वम रजस तथा फिर तमोगुण सतोगुण रजोगुण को दबा करके बढ़ता है बिल्कुल सरल बात है भगवान तीन गुणों की चर्चा कर रहे हैं पहले भगवान कहते हैं कि सतोगुण बढ़ता है तो दो गुण दब जाते हैं फिर भगवान कहते हैं रजोगुण बढ़ता है तो बाकी दो गुण दब जाते हैं फिर भगवान कह रहे हैं तमोगुण बढ़ता है तो बाकी दो गुण दब जाते हैं तो बिल्कुल सरल बात है तो यहाँ धागा लगा करके सब लोग भूमिका में पहला पेज निकालेंगे प्रार्थना पढ़ेंगे भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग धागा वहीं लगा रहने दो और भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग मेरे साथ बोलिए ओम ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदादिकं। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए। तो इस श्लोक को आप लोग समझ गए। भगवान ने आज के श्लोक में तीन बातें बताई हैं। पहली बात क्या? सतोगुण। सतोगुण क्या करता है? रजोगुण तमोगुण को दबाता है और बढ़ता है। फिर दूसरी बात क्या बताई? रजोगुण सतोगुण तमोगुण को दबाता है और बढ़ जाता है। और तीसरी बात क्या बताई? तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को दबाता है और बढ़ जाता है। तो भगवान ने तीन बातें बताई हैं। अब हम सुनेंगे तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। ये प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। ये तीनों गुण एक साथ मिले रहते हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि तीनों गुण जो है तीनों गुणों से जीव बना है। अगर एक गुण हावी हो गया तो इसका यह मतलब नहीं कि बाकी दो गुण नहीं है, दबा दिया। इसी प्रकार से है जैसे तीन रस्सियों से तीन रस्सियों से आपको बांध दिया जाए, है ना? तो कभी एक रस्सी से आप खींचते हैं तो बाकी दो रस्सियां बंधी हैं, लेकिन एक रस्सी आपको ज्यादा खींच रही है, तो बंधे तो आप तीनों रस्सियों से हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी दो रस्सियां नहीं रही, तीनों रस्सियों से जीव बंधा है। इसलिए कभी नहीं समझना कि अगर एक रस्सी से आप खींचे जा रहे हैं तो बाकी दो रस्सियां नहीं है, तीनों रस्सियां हैं। तो कभी सतोगुण की रस्सी आपको खींचती है, तो रजोगुण की रस्सी तमोगुण की रस्सी कमजोर पड़ जाती है, वो खींचती है। कभी रजोगुण की रस्सी खींचती है तो सतोगुण और तमोगुण की रस्सी कमजोर पड़ जाती है, और कभी तमोगुण की रस्सी खींचती है तो सतोगुण रजोगुण की रस्सी कमजोर हो जाती है। लेकिन तीनों रस्सियां हैं। और प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि प्रतियोगिता चलती रहती है, इन तीनों में प्रतियोगिता चलती रहती है। जैसे रस्साकसी होती है, रस्साकसी में तो दो ही रस्सियां होती हैं, है ना? रस्साकसी में तो दो रस्सियां होती हैं, है? एक रस्सी इधर एक रस्सी उधर, है? तो व्यक्ति या तो इधर खींचेगा या उधर खींचेगा, दो ही रस्सियां होती हैं। लेकिन यहां पर तीन रस्सियां हैं, तीन रस्सियां हैं, और ये तीन जो रस्सियां हैं ये अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। सतोगुण की रस्सी ऊपर की दिशा में खींचती है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था। जब सतोगुण बलवान हो जाता है तो आप ऊपर की तरफ जाते हैं, क्यों? सतोगुण निर्मल है, प्रकाश उत्पन्न करता है, हैं? इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो ऊपर की तरफ ले जाता है सतोगुण। तो ये रस्सी सतोगुण की, और रजोगुण की रस्सी मध्य में रखती है, बीच में रखती है। रजोगुण की रस्सी बीच में रखती है, ना ऊपर ना नीचे, ऊपर नहीं और नीचे नहीं, तो फिर कहाँ जाएंगे? क्या वहीं के वहीं रहेंगे? नहीं, मध्य में कई दिशाएं हैं, इधर 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 हजारों दिशाएं, मध्य में भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, तो भी हजारों दिशाएं हैं, है ना? तो रजोगुण की रस्सी खींचती है तो उसमें कई प्रकार की गतियां प्राप्त होती हैं, और तमोगुण की रस्सी नीचे की ओर ले जाती है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है, निद्रा आलस्य प्रमाद इन चीजों से तमोगुण बांधता है, तो आप नीचे की तरफ जाते हैं। तो तीन गुण जो है हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। अगर सतोगुण की रस्सी आपको ऊपर खींच रही है तो यह मत समझना कि रजोगुण तमोगुण की रस्सी अब नहीं रही, आप ऊपर ही जाएंगे। एक बिंदु ऐसा आता है कि फिर तमोगुण की रस्सी बलवान हो जाती है तो नीचे की तरफ ले जाएगी। तो ये जो है संघर्ष, रस्साकसी भी चल रही है, और रस्साकसी चल रही है और केंद्र में आप हैं, तीन रस्सियां आपको खींच रही हैं अलग अलग दिशाओं में, हैं? और केंद्र में कौन है? आप ही हैं, आप ही हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, खींचे जाते हैं, जो गुण बलवान होता है उसी में आप खींच जाते हैं। है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं ये प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है, अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। तीनों गुणों को लांघना है, अगर आप छूटेंगे तो तीनों गुणों से छूटेंगे, अगर आप छूटेंगे तो तीनों गुणों से छूटेंगे। पर ये नहीं है कि एक गुण से छूट जाएं, दो गुण में आप बंधे रहें एक गुण से छूट जाएं, या दो गुणों से छूट जाएं एक गुण में बंधे रहें, ये नहीं हो सकता। छूटेंगे तीनों गुणों से छूटेंगे, है ना, और नहीं तो तीनों गुण से बंधे, तीनों गुण से बंधे, है ना। ताकि प्रभुपाद लिखते हैं प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। एक गुण की प्रधानता उसके आचरण में प्रकट होती है, आचरण से पता चलता है कि कौन सा गुण है। सतोगुण, अगर सतोगुण की प्रधानता है तो आपको जो है वो सुख में लगाता है, सुख में लगाता है, हैं? कैसे सुख में लगाता है, सात्विक सुख में लगाता है। आप जो है आपकी दृष्टि इतनी दूर की हो जाती है कि तुरंत आप निर्णय नहीं लेते कि क्या अच्छा लग रहा है। सत्वगुण जो है आपको ऐसा विचार देता है कि किससे मेरा दूर तक कल्याण होगा, आप ये सोचते हैं मेरा क्या कर्तव्य है, इंद्रियों को क्या अच्छा लगता है। सतगुण ये नहीं कहता कि आपकी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है तुरंत वही करो करो। सतगुण क्या कहता है, कि इंद्रियों को अच्छा लगे ना लगे लेकिन आपकी सुरक्षा किसमें है, आप ऐसा काम करो। तो सत्वगुण आपको जो है कर्तव्य की भावना में लगाता है, कि आपका क्या कर्तव्य है, क्या कल्याणकारी है, किसमें कल्याण होगा, आगे चल करके कल्याण होगा। तो आचरण, आपका आचरण जो है ऐसा हो जाता है। सद्गुण में जो व्यक्ति होता है उसका आचरण दिखाई पड़ता, आचरण से वो इंद्रियों के आदेश के अनुसार काम नहीं करता है, कि क्या स्वाद अच्छा लगता है, स्वादिष्ट क्या है उसी को खाओ, नहीं, दिखाई देता है क्या दिखाई देता है उसी को देखो, अच्छा दिखाई देता है तो उसी को देखो, अच्छा सुनाई देता उसी को सुनो, नहीं। सत्वगुण क्या कहता है कि अच्छा तो दिखाई देता है लेकिन मुझे क्या देखना चाहिए, अच्छा दिखाई देता है लेकिन मेरे लिए क्या देखना कल्याणकारी है। तो सत्वगुण आपको जो है इस तरह से आपसे आचरण कराता है सत्वगुण। रजोगुण, रजोगुण जो अच्छा लगे वही करो, आपकी इंद्रियों को जो अच्छा लगे वही करो, रजोगुण। आगे जो है चाहे वो विष बन जाए, रजोगुण जो है आपको इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, आगे वो परिणाम बड़ा भयानक है। लेकिन रजोगुण जो है कहता है कि नहीं, इंद्रियों की तृप्ति करो, काम एस क्रोध एस रजोगुण समद भवा, रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध, तो ये जो है आपसे पाप कर्म भी कराते हैं। रजोगुण पाप कर्म कराता है, और जो तमोगुण है तमोगुण आपको निद्रा आलस और प्रमाद में लगाता है, ना तो आप सुख में लगते हैं, सतोगुण सुख में लगाता है आपको, और रजोगुण आपको इंद्रिय तृप्ति में लगाता है। रजोगुण ऐसे सुख में लगाता है जो सुरूर विश्व परिणाम में अमृत हो, रजोगुण ऐसे सुख में लगाता है जो शुरू में अमृत हो इन परिणाम में विश्व इंद्रिय तृप्ति। लेकिन तमोगुण ना तो सतोगुण जैसा सुख में लगाता है, न रजोगुण के सुख में लगाता है। तमोगुण किस में लगाता है? जो शुरू में भी अज्ञान और बाद में भी अज्ञान, निद्रा आलस्य प्रमाद पागलपन, तमोगुण जो है इसमें लगा। आचरण से पता चलता है किसका कैसा आचरण है, इससे पता चल सकता है कि कौन व्यक्ति सतोगुण में है, कौन व्यक्ति रजोगुण में है, कौन व्यक्ति तमोगुण में है। आचरण उसके कार्यकलापों में, खान पान में पता चलता है, खान पान में पता चलता है कि कौन व्यक्ति सतोगुणी है, कौन रजोगुणी है, कौन तमोगुणी है। सतोगुणी व्यक्ति जब खाता है तो वो क्या सोचता है, जो मैं खा रहा हूं ये क्या होना चाहिए, आयु, आयु बढ़ाने वाला होना चाहिए। उसका सबसे पहले विचार होता है आयुवर्धक है, आयु बढ़ाएगा वो जो खाता है, आयु बढ़ाएगा। आयु सत्व बल आरोग्य, दिमाग दिमाग की शक्ति बढ़ाएगा, बल वर्धक हो, आरोग्य वर्धक हो, आयु वर्धक और दिमाग वर्धक और आयु बल वर्धक, आरोग्य वर्धक, सुख प्रीति वर्धना, सुख वर्धक प्रीति वर्धक, सुख बढ़ाए प्रीति बढ़ाए। रसीला है, रसिया स्निग्धा चिकना है, स्थिरा स्थिर रहने वाला है शरीर में, हृदया हृदय को प्रिय है, तो ये सतोगुणी व्यक्ति सोचता है ऐसा भोजन सोचता है। रजोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है, कटु बहुत कड़वा, अम्ल बहुत खट्टा वो खाना है, खूब कड़वा हो खूब खट्टा हो, कटु अम्ल लवण खूब नमकीन, अति उष्ण बहुत गर्म, कटु में लवणात उष्ण तीक्ष्ण तीखा, जैसे मिर्चा खूब मिर्चा हो, तीक्ष्ण रुक्ष और बहुत रूखा हो, रूखा विदाहिना और जलन पैदा करे, तो ये रजोगुणी व्यक्ति जो है ऐसा भोजन करना चाहता है। जिससे क्या होता है, आहार राजशिष्टा दुख शोकामय प्रदा, दुख शोक और रोग पैदा करता। रजोगुणी व्यक्ति सोचता है दुख मिलेगा, शोक मिलेगा, रोग मिलेगा, कोई बात नहीं ये खाओ, दुख शोक और रोग मिलते हैं तो भी वो इन्हीं चीजों को पसंद करता है। क्या है, खूब कड़वा, खूब खट्टा, खूब नमकीन, कटु में लड़ा अति उष्ण और खूब गर्म और खूब तीखा, खूब रूखा और दाहकारक जलाने वाला है। तो ये चीज जो है रजोगुणी व्यक्ति विचार करता है कि भोजन में ये चीजें होना चाहिए, बाकी आयु घटे, बल घटे, आरोग्य घटे यानी रोग बढ़े, कोई बात नहीं चलेगा, ये चाहिए। तो खान पान में पता चलता है किसको क्या अच्छा लगता है, है। लेकिन हाँ कड़ुआ भी जो है सात्विक व्यक्ति ग्रहण करता है कड़ुआ भी, लेकिन वो कड़ुआ जो है कैसा है, आयुवर्धक है, बलवर्धक है, तो वो इस विचार से कड़ुआ भी ग्रहण कर सकता है दवाई के रूप में, वो कड़वी चीज भी ले सकता है। तो वो विचार करता है आयु वर्धक, बलवर्धक, आरोग्य वर्धक, सुख वर्धक, प्रीति वर्धक और मस्तिष्क वर्धक है ना। तमोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है, कैसा खाना चाहिए, यातयामम बासी, यातयामम जो बासी है, यातयामम गदरसम उसका रस निकल गया, पोती दुर्गंध युक्त है, पर्युषितम का मतलब क्या है, खैर जो भी हो, पोती पर्युषितम चेत उच्छिष्टम, उच्छिष्ट जो जूठा है फेंका गया है, आमिध्यम और अपवित्र है, तो वो जो है ऐसा भोजन उसको अच्छा लगता है। तो तमोगुणी व्यक्ति को ऐसा भोजन अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद कहते हैं खान पान से पता चलता है कौन व्यक्ति किस गुण में है। आगे प्रभुपाद कहते हैं इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी, अगले अध्याय में की जाएगी। खान पान किसका कैसा खान पान है, 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं, 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 8, 9, 10 आठवें श्लोक में सात्विक भोजन बताया गया है, नवें श्लोक में रजोगुणी भोजन और दसवें श्लोक में तमोगुणी भोजन का वर्णन हुआ है। आगे प्रवक्ता है लेकिन यदि कोई चाहे तो अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है, अभ्यास करो तो सतोगुण विकसित हो सकता है। कैसा अभ्यास करो, सवेरे की साधना, सवेरे का जो कार्यक्रम प्रभुपाद ने दिया है अगर इसका आप अभ्यास करें तो सतोगुण विकसित कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बताया है सवेरे का जो कार्यक्रम होता है मंगल आरती जप और प्रार्थनाएं और भागवतम क्लास, तो ये सब जो है सतोगुण में लाने के लिए बहुत सहायक है। आगे प्रभु लिखते हैं और इस प्रकार रजो तथा तमोगुणों को परास्त कर सकता है, रजोगुण तमोगुण को परास्त कर सकता है। नष्ट प्राय सुभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, अगर नित्य भागवत का सेवन करें यानी भक्तों की सेवा करें और भक्तों के मुख से भागवत का संदेश सुन, नित्यम प्रतिदिन अगर आप भागवत सुनते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं तो क्या होता है, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, तो भगवान में नैष्ठिकी भक्ति पैदा हो जाती है। तथा रजस्तमो भावा काम लोभ आदि, तो रजोगुण तमोगुण के भाव काम लोभ आदि चित एते अनाविद्धम, तो चित्त इनसे आविद्ध नहीं होता है, रजोगुण तमोगुण के भावों से चित्त आविद्ध नहीं होता है। इष्टतम सत्वे प्रसिद्धति, और सतोगुण में स्थित होकर के प्रसन्न हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। कैसे कैसे होगा, क्या करना है रोज है, मंगल आरती, नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत सुनकर सुनने से और भक्तों की सेवा करने से, तो रजोगुण तमोगुण के भाव आते हैं लेकिन कमजोर हो जाते हैं, रजोगुण तमोगुण के भाव कमजोर हो जाते हैं क्योंकि सतोगुण की रस्सी बलवान हो जाती है, रजोगुण की रस्सी तमोगुण की रस्सी कमजोर पड़ जाती है। तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेयस्य, तो रजोगुण और तमोगुण के जो भाव हैं उनसे आपका चित्त आविद्ध नहीं होता है। और सतोगुण में प्रसन्न हो जाता है, सतोगुण में चित्त क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। स्तम सत्व प्रसिद्धि। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि लेकिन यदि कोई चाहे तो वो अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमोगुणों को परास्त कर सकता है। आप चाहे तो कर सकते हैं, रजोगुण तमोगुण को परास्त कर सकते हैं। आप चाहते हैं, तीन गुणों में कौन चाहते, कौन सा गुण आपको चाहिए? सतोगुण, सतोगुण ऊपर की ओर ले जाएगा। तो अगर चाहें तो आप अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकते हैं, इस प्रकार रजो तथा तमोगुणों को परास्त कर सकते हैं। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतोगुणों को परास्त कर सकते हैं, रजोगुण का भी विकास कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। रजोगुण का विकास, रजोगुण को बढ़ा सकते हैं आप, रजोगुणी व्यक्तियों का संग करके रजोगुण बढ़ेगा आगे। अथवा कोई चाहे तो वो तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतोगुणों को परास्त कर सकता है, तमोगुण को बढ़ा सकते हैं आप, तमोगुण को भी बढ़ा सकते हैं, तमोगुणी व्यक्तियों का संग करके तमोगुण को बढ़ा सकते हैं आगे। यद्यपि प्रकृति के तीन गुण होते हैं किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है। सतोगुण आशीर्वाद देता है आपको, क्या आशीर्वाद देता है कि तुम छोटो इस संसार बंधन से जाओ, सतोगुण जो है आपको आशीर्वाद देता है। क्या आशीर्वाद देता है कि भगवान के चरणों की सेवा में जाओ, यहाँ पर क्यों सड़ रहे हो, सतोगुण आशीर्वाद देता है ना। सतोगुण आपको जो है छोड़ने के लिए जाता है, भगवान की तरफ इसको सतोगुण जो है आपको ले जाता है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं और वो इसे लांग कर शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो सकता है, शुद्ध सत्वगुण। फिर ये गुण नहीं होता, शुद्ध सत्व कहते हैं इसको, शुद्ध सत्व। अब गुण नहीं रहा ये, गुण का मतलब रस्सी। तो गुण जो है तभी कहा जाता है जब तीनों होते हैं। अगर रजोगुण तमोगुण बिल्कुल नहीं रहा तो ये सत्वगुण है, इसे क्या बोलते हैं, शुद्ध सत्व है ना, शुद्ध सत्व में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहा जाता है, जिसमें वो ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है, विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। विशेष कार्य देख करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस गुण में है ना। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो हमें ये समझना है, भगवान ने इन गुणों का ये इस अध्याय में पूरे अध्याय में वर्णन किया है इन गुणों का, लेकिन फिर इन गुणों की चर्चा भगवान ने 17वें अध्याय में की है। 17वें अध्याय में भगवान ने तीन गुणों में भोजन बताया, तीन गुणों में तपस्या बताई, तीन गुणों में दान बताया, तीन गुणों में यज्ञ बतलाए। 18वें अध्याय में भगवान तीन गुणों में ज्ञान बताते हैं, तीन गुणों में कर्म बतलाते हैं और तीन गुणों में कर्ता बतलाते हैं, तीन गुणों में बुद्धि बताते हैं, तीन गुणों में धृति बताते हैं, फिर तीन गुणों में सुख बताते हैं। तो भगवान ने तीन गुणों का बहुत वर्णन किया। तो वास्तव में जो तीन गुण हैं उनमें से कोई भी गुण अगर बढ़ता है तो बढ़ता कैसे है? वास्तव में जो बलवान कोई भी गुण बलवान होता है तो उसके पीछे कारण आप ही हैं, आप ही कारण हैं। आप जिस गुण का संग करते हैं वही गुण आपको खींचता है, संगति आपकी है। कारणम गुण संगो सदसद योनि जन्मसु। तो ये जो जीव है ये तीन गुणों में से किसी की भी एक गुण का संग करता है और उस गुण को फिर वो बढ़ाता है। तो संगति आप करते हैं, आप भोगना चाहते हैं तीन गुणों में से किसी गुण को, तो वही गुण जो है आपको अपनी दिशा में खींचता है। आप सत्वगुण को भोगना चाहते हैं तो सत्वगुण आपको अपनी दिशा में खींचेगा। आप रजोगुण को भोगना चाहते हैं तो रजोगुण आपको अपनी दिशा में खींचेगा। आप तमोगुण को भोगना चाहते हैं तो तमोगुण आपको अपनी दिशा में खींचेगा। आप तो भोगना चाहते हैं लेकिन वे आपको बांधते हैं, और आप ना चाहते हुए भी आप खींचे जाते हैं उनके द्वारा। आपको वैसे कार्य करने पड़ते हैं, आप नहीं चाहें तो भी आपको वैसे कार्य करने पड़ते हैं। विवश होकर के आपको वो कार्य करना होता है। तो ये जो है बहुत बड़ा विज्ञान है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी, इनका प्रश्न है कि प्रभुपाद ने जो चार नियम बताए हैं तो इनका पालन करने से सत्वगुण में हम आते हैं, इनका पालन करने से आपको सहायता मिलती है हरे कृष्ण मंत्र का जप करने में। वास्तव में तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना ही असली लाभ है। जो चार नियम है इनका पालन करने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन इनका अगर पालन करते हैं तो आपको हरे कृष्ण मंत्र के जप में सहायता मिलती है। अगर आप फिर भी हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करते हैं तो चार नियम का पालन तो गाय बैल भी करते हैं, गधे भी करते हैं कि नहीं? चार नियम का पालन है गाय बैल गधे करते हैं है? बताओ कौन सा नियम तोड़ते हैं? जैसे गधा है तो धोबी घर में रहता है ना, तो मांसाहार नहीं करता, व्यभिचार भी नहीं करता, आजीवन ब्रह्मचारी गधा कि नहीं है? मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं। वो जुआ कहाँ खेलता है? गधा कहीं जुआ नहीं। नशा भी नहीं करता, कौन सा नशा करता है? है तो चार नियम का पालन तो ये पशु पक्षी भी बहुत से करते हैं। व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, लेकिन फायदा क्या है हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करते? तो चार नियम का पालन करने से आपको हरे कृष्ण मंत्र का जप करने में सहायता मिलती है। अगर फिर भी हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं किया तो क्या फायदा? चार नियम का पालन करने से क्या फायदा? हाँ, फिर भी गधे हैं बैल हैं, चार नियम का पालन करते हैं, अच्छे माने जाते हैं, लेकिन है तो पशु, अच्छे पशु हैं। हाँ, आप फिर भी जो है गधे और बैल ही हैं, अच्छे पशु हैं, लेकिन है पशु, मनुष्य तो नहीं है। कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं बनता, चार नियम का पालन करने से कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं बनता। वो पशु के धरातल में रहता है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि हाँ अच्छा पशु है। मनुष्य के जीवन में अगर आप भक्तों का संग नहीं करते हैं, श्रीमद् भागवत नहीं सुनते हैं, हरे कृष्ण का कीर्तन नहीं करते हैं, तो मनुष्य जीवन तो शुरू नहीं हुआ है ना। और कोई? हाँ हाँ, लांघना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप पहले सतोगुण का संग करिए, और सतोगुण से आप जो है रजोगुण तमोगुण को आप परास्त करिए, और फिर ऊपर उठिए, और फिर ऊपर उठते उठते फिर सतोगुण को भी छोड़ देते हैं तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं शुद्ध सत्व। ये तीनों गुणों का जो है एक अच्छा उदाहरण दिया था किसी भक्त ने कि ये संसार रूपी जंगल है, ये संसार रूपी जंगल है, और आप अपने घर से भटक करके जंगल में आ गए। आपका घर कहाँ था? भगवान के धाम में। वहां से आप आ गए इस जंगल में। तो इस जंगल में ये तीन डाकू हैं, इन्होंने पकड़ लिया आपको, है ना। तो जो तमोगुण है वो तो इतनी मार मारता है, इतनी मार मारता है कि मतलब मरे जैसा हो जाता है व्यक्ति। तमोगुण तो ऐसा है। तो जो रजोगुण है उसको कुछ दया आ जाती है, वो कहता नहीं 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 इसको मारो नहीं, इसका धन संपत्ति छीन लो। तो रजोगुण जो है कुछ दया करता है, तमोगुण तो मार डालने के लिए तैयार है। तो वो जो है मतलब वही है, बिल्कुल बेहोश कर देता है कि आप नीचे नीचे जाएंगे, तमोगुण नीचे नहीं ले जाता है, वो मारने की तरह है। रजोगुण कहता नहीं 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 इसको छोड़ दो, लेकिन इसका जितना पैसा माल है वो ले लो। तो रजोगुण वैसा है। इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आपका सब आपकी पूरी शक्ति खींचता है, ले ले शोषण करता है रजोगुण। फिर सतोगुण तीसरा है, उसको दे आती है, कहता है नहीं नहीं छोड़ दो छोड़ दो इसको छोड़ दो है? और सतोगुण कहता है कि देखो मैं तुमको जो है सही रास्ता दिखाता हूँ, जंगल से बाहर निकलने का सही रास्ता दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। तो सतोगुण आपको ले जाता है, कहाँ ले जाता है? उस जंगल के इस सीमा में ले जाता है, कहता देखो ये रास्ता है यहाँ से चले जाओ। तो आप कहते हैं कि भाई आपने तो बहुत अच्छा किया, मुझे रास्ता दिखाया, आप इसे चलो मेरे साथ भगवान के धाम में। तो सतोगुण कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, अगर आपको रास्ता दिखाता है। तो सतोगुण ऐसा है ना। तो तमोगुण रजोगुण सतोगुण ये जो है तीन डाकू हैं, लेकिन इसमें से सबसे खतरनाक कौन है? तमोगुण है, मारता रहता है, मारता बेहोश कर देता है। और सतोगुण कैसा है, क्या कहता है वो? नहीं नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन क्या करो क्या करो, हाँ पैसे से सब लूट लो इसके, इसको छोड़ दो। और सतोगुण क्या कहता है? हाँ चलो चलो चलो, तुमको जो है मैं रास्ता दिखाता हूँ, तुम्हारे घर का रास्ता दिखाता हूँ, मैं तो नहीं आऊँगा तुम्हारे घर में, मैं तुमको रास्ता दिखा दूंगा, है ना। तो सतोगुण है क्या जी? शत्रुघ्न। हाँ, तो वो शत्रुघ्न जो रजोगुण तमोगुण के साथ रहता है वो नहीं जाएगा आपके साथ। चोरों की संगति करने वाला भी चोर है, तो सतुगुण रजुगुण तमोगुण के साथ रहता है तो वो भी चोर ही है, तो वो साथ में ही जाएगा। फिर वो शुद्ध सत्व बन जाता है। तो भगवान के धाम में जब आप जाते हैं तो सतुगुण नहीं कहलाता है, क्या होता है? शुद्ध सत्व या विशुद्ध सत्व। नहीं, वो फिर भगवान की शरण लेता है, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करता है। जीवीर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तो स्वेच्छा से कृष्ण की सेवा करता है जीव। तो भगवान कोई फोर्स नहीं करते हैं आपको कि फोर्स करके आपसे कोई काम नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रेम है। भगवान का जो प्रेम है तो वो प्रेम जो है आपको कभी फोर्स नहीं करता है कि आप प्रेम करें भगवान से। प्रेम जो है, प्रेम की कमजोरी है कि प्रेम जो है आपको कभी फोर्स नहीं करता कि आप भी मुझसे प्रेम करें। अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा कि आप मुझसे प्रेम करिए। तो भगवान जो है प्रेम करते हैं, तो जीव को भगवान फोर्स नहीं करते हैं कि तुम मेरी सेवा करो, तुम मुझसे प्रेम करो। तो भगवान जो है आपको फोर्स नहीं करते हैं और आपको स्वतंत्रता देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं कि आप सेवन ना करो, आपको स्वतंत्रता देते हैं। और स्वतंत्रता का आप दुरुपयोग करते हैं तो भगवान को छोड़ देते हैं। प्रेम में कभी भी फोर्स नहीं होता, भगवान प्रेम करते हैं और उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं आप, तो भगवान को छोड़ देते हैं और संसार में आ जाते हैं। तो शुद्ध सत्व है ये आपको भगवान का प्रेम प्रदान करता है। तो प्रेम में फोर्स नहीं होता है, आप अपनी इच्छा से ही सेवा करेंगे तो प्रेम है। तो ये जो है जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, ठीक है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाल की जय। श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय। श्री गौंताई की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।